قتل الإنسان ما أكفره. अब क्यों इंसान कोई इस हिदायत के पैगाम की तरफ नहीं आता? क्योंकि वो अपने आप को गनी समझता है ना, और गनी क्यों समझता है? उसके अंदर इतना तकब्बर है, अपनी इतनी बड़ाई है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं इतनी बड़ी चीज हूं। जैसे लोग आपको भी कहते हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें सब पता है, सब पता है हमें, जैसे पता नहीं पैदा होते ही पता था इनको, यानी साइंस पढ़ने की जरूरत, मैथ पढ़ने की जरूरत, और जितने सब्जेक्ट ना वो पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए इतने साल स्कूलों और कॉलेजों में लगाते हैं। लेकिन दीन एक वाहिद शोभा है, आप जिससे बात करेंगे ना वो कहेगा मुझे तो पहले ही पता है, उसको सारा दीन पहले से ही आता है, पढ़ के आया माँ के पेट से। तो ये तकब्बुर की अलामत होती है कि इंसान ये सोचे मुझे सब पता है, यानी बस मुझे ना बताओ, सब जानता हूं मैं, और यही जिहालत की अलामत है। जो कहता है ना मुझे सब पता है, वो सबसे बड़ा जाहिल है, उसको पता ही नहीं कि वो कितना कुछ है जिससे लाइल्म है। जिसको जितना इल्म आता जाता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे तो अब पता चल रहा है कि कितना कुछ मुझे नहीं पता था, और अभी कितना कुछ है जो मैंने सीखना है, तब उसको एहसास होता है। जिस इंसान में तकब्बुर आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जर्रे के बराबर भी किसी के दिल में तकब्बुर हो। अब जब तकब्बुर आता है तो इंसान इनकार करता है, फिर वो इस हिदायत के पैगाम का भी इनकार करता है, वो फिर सीखने का भी इनकार करता है, समझने का भी इनकार करता है, बात सुनने से भी इनकार कर देता है, मैंने सुनना ही नहीं। अकड़ है ना अपने अंदर, अकड़ किस चीज की है, मुझे सब पता है, मुझे ना कुछ बताओ। तो उसका जवाब दिया जा रहा है, मारा जाए इंसान मा अकफरा, कितना सख्त मुनकर है, इनकार करने वाला है। किसका इनकार करता है? अल्लाह का, रसूल का, इस कलाम का, कयामत का इनकार करता है। कैसा है इंसान? देखिए, एक बदुआइया कलमा है, इसको एक बुरा भला कहा जा रहा है, ये कैसा है ये इंसान, मारा जाए ये, कि ये इतना नाशुकरा, इतनी बड़ी सादत जिसको मिल जाए कि उस तक कुरान पहुंच गया, नबी की बात पहुंच गई, और वो फिर भी ना माने, तो कितना सख्त उसको मलामत किया गया। देखिए यहाँ पे तारीफ किन की गई है, उन हाथों की जो इस किताब को लिखते हैं, उन हाथों की जिन्होंने इस कलाम को लिया है, और किसको डांटा जा रहा है, वो जो इस कलाम का इनकार करने वाले। अब उनकी इस तकब्बुर को निकालने के लिए क्या कहा गया, सोचो तो सही, देखो तो सही, मिन अय्यि शैइन खलक, किस चीज से उसने पैदा किया उसको। इंसान सोचे तो सही, कभी इस बात को सोचा कि हम क्या थे एक दिन और क्या हैं आज, मिन नुतफते, नुतफे से, एक ऐसी बूंद से जो हकीर पानी का कतरा है, और अगर कपड़े पे भी लग जाए तो इंसान नफरत करता है। हजरत हसन बसरी ने कितनी खूब बात की, फरमाया कि वो इंसान कैसे तकब्बुर कर सकता है जो दो बार पेशाब के रास्ते से आया, एक दफा बाप के पेशाब के रास्ते से नुतफा निकला, और माँ के पेशाब के रास्ते से इंसान दुनिया में आया। खलकहू फकद्दरा, उसने पैदा किया उसको, फिर तकदीर मुकर्र की, नुतफे से पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने उसको पैदा कि वो किस बात के ऊपर शेखियां मारता है, बड़ाइयां करता है, अपने आप को कुछ चीज समझता है, वो देखे तो सही वो कहां से पैदा हुआ, अपनी औकात तो देखो, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया और एक नुतफे से पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकर्र कर दी। तकदीर क्या चीज है? दो चीजें इसमें आती हैं, एक मतलब ये हर चीज को इतदाल के साथ बना दिया, हर चीज को बैलेंस कर दिया, हर चीज का एक तकदीर होती है ना, अंदाजा मुकर्र करना, तो अंदाजे के साथ हर चीज रखी, नाक को उसकी जगह पे, कान उनकी जगह पे, देखिए कितना बैलेंस है, सुभान अल्लाह, आप देखते नहीं है, एक कान ऊंचा होता एक नीचा होता तो क्या होता, एक एक आंख ऊपर होती एक नीचे होती तो क्या होता, अब इंसान अगर देखे, अल्लाह ताला ने तीन अंधेरों में उसको कितनी परफेक्शन से बना दिया। और दूसरा माना तकदीर का, कि उसकी तकदीर लिख दी, जैसे कि बच्चा माँ के पेट में ही होता है तो उसके लिख दिया जाता है कि ये मर्द होगा या औरत होगा, नेक होगा या बद होगा, कितनी इसकी जिंदगी होगी, रिस्क कितना होगा, ये चीजें लिख दी जाती हैं उसके लिए वहां पे। तो तुम्हारा तो कोई बस नहीं, ना अपने पैदा होने पे, ना दुनिया में किस वक्त आने पे, ना अपनी जेंडर पे कि मैं मर्द हूं या औरत हूं, ना ही इस चीज के ऊपर कि तुम्हारी तकदीर क्या हो, किसी चीज के ऊपर भी नहीं है। और तुम सबीला यसरा, ये देखिए, अब उसके पैदा हुआ, उसकी तकदीर पेट में लिख दी गई, फिर उसका आने का रास्ता आसान करती है। इसके दो माने उलमा ने बयान किए। पहला माना ज्यादा राजे है, ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई है, वो क्या है कि दुनिया में आने का रास्ता, क्योंकि पीछे तखलीक की बात है, दुनिया में आने का रास्ता अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। और वाकई अल्लाह अकबर, एक नुतफा था जब रहमे मादर में गया और उससे एक बच्चा पूरा बन गया मुकम्मल, जो देखता सुनता और जहन रखता और उसके सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। और वो सुभान अल्लाह, जिस रास्ते से दुनिया में आता है, कितना बड़ा बच्चे का सर होता है, कैसे उसकी पोजीशनिंग होती है, और फिर किस तरह अल्लाह ताला वो आसान करता है उसके लिए दुनिया में आना, उसके कंधे हैं, सर हैं, उसका निकलना अल्लाह ताला आसान बनाता है, ये कितनी अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत की निशानी है। तो अल्लाह ताला ऐसा ना करे तो कैसे इंसान दुनिया में पैदा हो, क्योंकि तो कितना बड़ा मरहला होता है, कितना हैरत अंगेज है, तंग रास्ते से उसको दुनिया में लेकर आया। सुम्मा अमातहु फअकबरा, फिर मौत दी उसको, फिर कब्र दी उसको। अच्छा आप देखें, सुम्मा आया और फा आया, सुम्मा में तराखी है यानी थोड़ा सा डिले है, लेकिन फा जो है ना वो फौरन होता है। दोनों के तर्जमे हम फिर तो लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। उसको पैदा किया फकद्दरा, फिर तकदीर लिख दी, इसलिए पेट में ही लिख दी। सुम्मा सबीला यसरा, फिर 9 महीने पेट के अंदर रहा, फिर उसका रास्ता आसान किया, फिर वो दुनिया में रहा, फिर मौत आई उसको, लेकिन साथ ही कब्र मिल गई। ऐसे नहीं कि कोई 10 साल के बाद उसको कब्र मिलती, उसी वक्त ही उसको कब्र दे दी जाती। एक दूसरा माना जो सुम्मा सबीला यसरा का है, वो दूसरा माना भी लिख लें कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, इन्ना हदीना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने उसको रास्ता दिखा दिया, चाहे शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा। तो अल्लाह ताला ने दीन का रास्ता उसके लिए आसान कर दिया और उसको दिखा दिया, वही भेज के, रसूल भेज के, और फितरत के अंदर उसके अल्लाह ताला की पहचान रख के अल्लाह ताला ने उसके लिए ये सीधा रास्ता आसान कर दिया। अब वो जिधर को चाहे जाए। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हर इंतजाम कर दिया इंसान की हिदायत का। और लेकिन राजे ज्यादा पहले ही बात है, फिर उसके बाद उसको मौत आ जाती है। और देखिए यहाँ पे जहां पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवाई है ना, वहीं पे मौत का जिक्र किया। इसका मतलब मौत भी कोई बुरी चीज नहीं है, वो भी एक इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से नियमत है। क्योंकि अगर इस दुनिया में मौत ना होती तो आदम अलैहिस्सलाम से अभी तक के इंसान यहाँ पे जिंदा होते तो क्या हाल होता, क्या हाल होता इस जमीन का, कैसे रहते यहाँ पर। तो मौत अल्लाह ताला से मुलाकात का नाम है। मौत दूसरे मोमिन के लिए तो अल्लाह ताला ने जो उसके लिए नेमतें रखी हैं उनको पाने का नाम है। जैसे जन्नत की तरफ की खिड़की खुल जाएगी उसके लिए कब्र के अंदर, या अल्लाह ताला की तरफ से इनामात उसको मिलेंगे, या ऊपर जाएगा, गैब की दुनिया उसको नजर आएगी, आसमान के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। तो मौत उसके लिए तो अच्छी ही चीज़ है, उसके लिए तो दुनिया कैद खाना थी। तो अल्लाह ताला उसको मौत दे देता है, वो भी उसके बस में नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया में आने का रास्ता आसान किया, ये उसके बस में नहीं था। अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर लिखी, उसमें उसका कोई बस नहीं। अल्लाह ताला ने उसकी तखलीक की, उसमें उसका कोई बस नहीं। कब्र उसको कहाँ मिलती है, उसमें उसका कोई बस नहीं। किस में बस है तुम्हारा? सिर्फ वो जो थोड़ा सा अरसा इसके दरमियान है कि जब तुम दुनिया में आते हो और जब तुम यहां से जाते हो। बस इतने छोटे से वक्फे के अंदर इंसान कितना अल्लाह ताला को नाराज कर देता है कि जहन्नुम तक पहुंच जाता है। और इतने छोटे से अरसे की तो फरमाबरदारी रिक्वायर्ड है, मतलूब है इंसान से, इतनी देर के लिए भी अल्लाह के फरमाबरदार नहीं बन सकते। कितना अरसा होगा जब से बाले होते हैं मरने तक, कितना अरसा मिलता है इंसान को? कोई 60 साल मिल जाते होंगे, 70 साल मिल जाते होंगे, 15 16 साल में या 12 13 साल में तो जाके बाले होता है। 10 साल तो वैसे ही उसकी जिंदगी से निकाल दो, 80 साल का भी है तो 10 साल तो वैसे ही निकाल दो। कोई 70 साल की फरमा बरदारी, उसके बदले में हमेशा की नेमतें मिलना, ये कितना फायदे का सौदा है। और कितना बड़ा नुकसान में है वो इंसान जो इतनी सी जिंदगी के अंदर इतने गुनाह कर बैठे कि वो जहन्नुम में चला जाए और वहां पे जले और फिर फरियादें करे। तो यहां से हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने कब्र दे के भी इंसान के ऊपर रहम किया, क्योंकि अगर कब्र ना हो, हम कब्र से यहाँ पे वो घड़ा मुराद लें अगर, कि कब्र अगर ना हो जिस घड़े में इंसान को दफना दिया जाता है, तो ऊपर लाशें पड़ी रहती तो दरिंदे नोचते और क्या क्या उसकी बेहुर्मती होती। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को कब्र बनाने का और कब्र में दफन करने का सिखाया। और ये आज से नहीं है, हाबील और काबील के वक्त से, ये जब पहला कत्ल हुआ था तो उस वक्त से ये बात है कि इंसान को दफनाया जाए। नेचुरल यही चीज़ है जो उस वक्त से चली जा रही है, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये हमेशा से इंसानियत को यही दर्स दिया गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम फरमाई। इसके बावजूद आप देखें, जब कोई लोग दीन इस्लाम के पैरोकार नहीं है तो वो तरह तरह की फिर चीजें निकालते हैं, जैसे पता चला कि वो कैलाश वैली जो हुंजा में कैलाश लोग हैं, वो अपने मुर्दों को ऐसे बिल्कुल ओपन में छोड़ देते हैं कि गिद्ध वगैरह आए और उनको खाएं और उनके नोचें उनके गोश्त को, इस तरह के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने नए से नए अपने शैतान कैसे तरीके फिर सुझा देता है। अल्लाह तआला ने तो इसके डेड बॉडी को भी तकरीम देने के लिए इसको कब्र देने का हुक्म दिया कि कब्र दो, ताकि इंसान की इज्जत के साथ वो जमीन के नीचे दफनाया जाए और कहीं ऊपर उसके जिस्म के पर चेड़ पड़े होते, गिद्ध खा रहे होते, तो कैसी उसकी बेहुर्मती है। अल्लाह अकबर। देखें कि कब्र ही वो मंजिल है जो आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। देखें, अब वो दुनिया में आया था नुतफे की शक्ल में और फिर यहां से चला गया, कब्र में दफन हो गया, ये उसका स्टार्ट और उसका एंड बता दिया गया यहाँ पे। कितना छोटा सा टाइम है ना, कितनी छोटी सी जिंदगी। दुनिया में आया सुम्मा सबीला यसरा और फिर सुम्मा माता हूँ फाकबरा, बस ये कहानी है इंसान की। नंगे बदन आया और एक कफन लेके चला गया। क्या जमा पूंजी थी उसकी, एक कफन के लिए उसने इतना अपने आप को हलकान किया, लेके कुछ भी नहीं गया, ना वो गाड़ियां, ना वो घर, ना वो कीमती जेवरात, ना वो कैश, बैंक बैलेंस, जायदादें, कुछ भी नहीं लेके गया। बड़ी बड़ी जायदादें होने के बावजूद एक 2 गज के घड़े के अंदर पड़ा हुआ जाके, ये है कहानी इंसान की। इंसान समझता नहीं, और वो यही सोचता है कि मैंने यहीं रहना है और मौत मुझे नहीं आनी, और मौत आते ही पहली मंजिल शुरू हो जाती है। अखबारा कब्र शुरू हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र के पास होते थे तो बहुत रोते थे। लोग कहते थे कि आप कब्र को देख के इतना क्यों रोते हैं, तो फरमाते थे ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जो यहां से पार हो गया वो आगे भी पार हो जाए, और जो यहां पे नाकाम हो गया फिर आगे उसका क्या बनेगा। तो कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत का बाग बन सकती है या जहन्नुम का गड़ा बन सकती है। अब वो एकदम उसको ये सारी चीजें उस वक्त पता चलती हैं जब गैब का पर्दा उठ जाए, सुम्मा इदा शाअ अंशरा, फिर जब वो चाहेगा उठा खड़ा करेगा उसको। यानी कयामत आ जाएगी, वो बस एक ही जजरा होगा और इन सब मुर्दे खड़े हो जाएंगे। अब देखिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला लम्मा या कदीमा अमारा, फिर हरगिज नहीं, इंसान को ये जेब नहीं देता, जिस रविश पे वो चल रहा है वो उसको जेब नहीं देती, लम्मा या कदीमा अमारा, नहीं पूरा किया उसने जो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया। उसने हुक्म दिया यानी अल्लाह ताला ने जो उसको हुक्म दिया उसने उसको पूरा नहीं किया, यानी इस जिंदगी के अंदर इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जो फराइज आयद करता है, जो अहकामात उसका देता है, जैसे चलने को कहता है वो वैसा नहीं करके जाता, वो अपनी मनमानियां करता है, वो अपनी ही नए से नए तरीके बनाता है, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देता है, उनको तोड़ता है, वो जिंदगी जाया करके चला जाता है, वो जिंदगी का मकसद ही पहचानता नहीं, वो गफलत में पड़ा रहता है। तो ये एक गिला है कि देखो इंसान को उसने पूरा नहीं किया जो उसको हुक्म दिया गया। इंसान का मकसद क्या है? वमा खलकतुल इंस वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नहीं पैदा किया इंसानों को और जिन्नों को मगर सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, माँ पहले लगा के ना और इल्ला लगा के, एक काम के लिए सिर्फ पैदा किया, एक एक्सेप्शन है जिसके लिए पैदा किया गया, और किसी चीज के लिए नहीं कि वो मेरी इबादत करे। और यही काम इंसान नहीं करता, सब कुछ कर गया एक अल्लाह की इबादत ही ना की, ना सीखा इबादत करना क्या होता है, ना समझा इस चीज को कि इबादत होती क्या है, करनी कैसे है, इसका हक कैसे अदा करूं इबादत करने का, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार के चला जाता है। तो कल्ला लम्मा या कदीमा अमरा, इसने नहीं पूरा किया जो अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया था, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, गाफिल ही रहा। और आज देख लें कितनी इंसानियत दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है खुदा फरामोशी की जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल भूल गए हैं किसने पैदा किया, बिल्कुल भूल गए हैं कौन रिस्क देता है, बिल्कुल भूल गए हैं किसने परवरिश की, चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सस्टेन कर रहा है, कौन है मेरा मालिक, क्या उसका कोई हक है जो मुझे पूरा करना है। सोचते हैं बस खाया पिया, घर बनाए, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, शादियां कर दी, बस हमारा मकसद पूरा हो गया। किसी की वफात हुई तो उन्होंने कहा, लोगों ने, वो बूढ़े होके मरे थे तो उनके बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए थे, तो जो लोग वहां पे बात कर रहे थे उनके वफात पे, कहने लगे कि बड़ी कामयाब इन्होंने जिंदगी गुजारी। क्या कामयाब जिंदगी गुजारी? बच्चों को देखो पढ़ा लिखा के बड़े ओहदों पे, फाइज कराया तो बड़े 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 ओहदों पे पहुंच गए बच्चे इनके, तो बड़ी कामयाब इनकी जिंदगी हो गई, तो इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। यानी हमारे दिखे जहनों के अंदर जिंदगी का मकसद क्या है, बच्चे पढ़ लिख के बड़े ओहदों पे पहुंच जाए, बहुत मालदार हो जाए, तो बस हमारा मकसद पूरा हो गया, हम कामयाब हो गए, क्या इसी के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था तुम्हें दुनिया में, यही कामयाबी थी, कहां पे इसको कामयाबी बताया गया। अब बच्चे चाहे कोई दीन पे है नहीं है, चाहे खुद दीन को समझा नहीं समझा, चाहे खुद अल्लाह ताला की इबादत को के तकाजों को पूरा किया या नहीं किया, उसे कोई सरोकार नहीं है, बस पढ़ा लिखा के उनकी शादियां कर दी ना तो कामयाब हो गए, ये तो हमारा हाल है। तो फिर काफिर के और एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू में, सोच में कोई फर्क नजर आता है आपको? कोई फर्क नहीं नजर आता, काफिर भी यही सोचता है ना, बस घर बना लूंगा, बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे, चलो वो उनकी शादियों की नहीं फिक्र करेगा, जहां मर्जी जाते रहे, एक मुसलमान है तो ये फिक्र कर लेगा, बस इतना ही सा फर्क। तो अल्लाह ताला ने आगे पहले इंसान की तखलीक से उसको बताया कि अपने अंदर गौर व फिक्र करो, तुम्हें मैंने किस चीज से पैदा किया है, और उससे नसीहत लो, ये निशानी है। अब अगर इससे भी नसीहत नहीं मिलती तो अनफुस में जो निशानी है उससे नहीं नसीहत मिलती, तो आफाक में देख लो, यानी अपने इर्द गिर्द देख लो, कायनात में देख लो, उससे इंसान को याद दिलाया गया कि कोई हस्ती है ना जो ये तुम्हारे सारे काम करके दे रही है, और उसमें किस चीज की तरफ, खास तौर पे इन आयात में बताया गया इंसान के खाने की तरफ, फल यंजुरिल इंसानु इला तआमी, तो चाहिए कि देखे इंसान अपने खाने की तरफ। खाने की तरफ देखे तो हम तो रोज देखते हैं, देखना ऐसा नहीं कि आप देख के कहें वाह वाह आज बड़ा मजे का खाना बनाया है, या बड़ा डेकोरेटिव खाना है, बड़ा उसको मतलब ऐसे सजाया हुआ है बड़े खूबसूरत बर्तनों में और बड़ा क्लासिक है, तो वो बहुत जबरदस्त हो गया, बस इतना ही काफी है। नहीं, खाने के ऊपर गौर करने को बताया गया कि गौर करो ये खाना कैसे बना, कैसे फिर मुझ तक पहुंचा, फिर कैसे पका, कैसे मेरे सामने आया, सब चीजों पे गौर करो। कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, अन्ना सबबन अलमा असबा, हमने उंडेला पानी को उंडेलना, इस खाने को पैदा करने के लिए सबसे पहले क्या चीज अल्लाह ताला ने इंतजाम में की कि पानी को बरसाया। पानी बरसता है तो फिर इंसान के लिए खाने पीने का इंतजाम होता है, अगर पानी ना बरसे खुश्क साली हो जाए इंसान खाएगा कहाँ से। आप देखें जहां पे खुश्क साली हो जाती, बारिशें नहीं होती, कुछ भी चीज नहीं उगती, तो आप ये नहीं कह सकते चलो मैं सब्जियां नहीं खाऊंगी गोश्त खा लूंगी। जिन जानवरों को आप खाते हैं वो यही तो ग्रीनरी खाते हैं, वो भी मर जाते हैं फिर, और इंसान को कहत में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, सुम्मा शक्कना अर्द शक्का, फिर मुख्तसरन बताया गया कि देखो क्या प्रोसेस होता है, फिर फाड़ी हमने जमीन, फाड़ना यानी बीज जो है जमीन का सीना फाड़ के निकलता है, क्या बीज के अंदर इतनी ताकत है या उस पानी में इतनी ताकत है कि कहाँ से चले और कहाँ तक पहुंचे और फिर सैराब करे जमीन को और फिर वो समुद्रों से भाप बन के उड़ा, बादलों की शक्ल में आया, फिर बरसा, ये सब खुद खुद हो गया या इसको कोई करने वाला था। देखा तुमने कि तुम्हारा खाना पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कितनी हवाएं चलाई, कितने बादल उड़ाए, कितने बारिश के कतरे जमीन के ऊपर पड़े, कितनी जमीन कहाँ कहाँ से फटी और उससे कोंपले निकली, छोटी छोटी कोंपले, फिर उसके बाद फअंबतना फीहा हब्बा, फिर उगाया हमने इसमें गल्ला, फिर वो कोंपले बड़ी हुई, फिर उनके अंदर अनाज लगा, कहीं गंदम लगी, कहीं जौ लगा, कहीं मकई लगी, कहीं चना लगा, कहीं चावल लगे, कहीं दालें लगी, कितनी किस्म का अनाज तुम्हारे लिए उगा दिया, वाइना ब व कदबा, और फिर वैरायटी देखो, अंगूर भी और सब्जियां भी, व जैतून व नखला, और जैतून भी और खजूर भी, ये सारी बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस जमीन से निकाली, पानी वही, जमीन वही, सूरज चमकने वाला वही, लेकिन कहीं अंगूर निकल रहा है, कहीं हब निकल रहा है गल्ला, कहीं जैतून निकल रहा है, कहीं खजूर निकल रही है, कहीं और कोई फल निकल रहा है, सोचते नहीं। वो ही फूल और पत्ते हैं, शहद की मक्खी बैठे तो शहद बनाते, रेशम का कीड़ा बैठे तो रेशम बनाने लगे, गाय खा ले तो दूध देने लगे, सोचते नहीं हो। वहदाई का गुलबा, और बागात घने उसने तुम्हारे लिए बना दिए। अल्लाह अकबर, एक बाग में भी कितनी तरह के दरख्त होते हैं और उनपे कितना फल होता है, एक आप आम के बाग में देख लें कितने बेशुमार आम के दरख्त, और बेशुमार एक एक दरख्त पे कितने 100 आम लगे हैं, कितना निजाम तुम्हारे लिए चला दिया, कितना इतमाम तुम्हारे लिए किया, कितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स तुम्हारे लिए रखती, कि एक चीज खा के इंसान नहीं तंग पड़ता, उसके पास कितनी चीजें हैं, कितना निजाम चलता है, तो इंसान की जिंदगी का ये सांस चलता है, सोचें आप सर। मैंने जैसे आपको बताया, कहीं बादल चले, कहीं हवाएं चली, कहीं समुद्रों से भाप उठी तो कहीं बारिश के कतरे बरसे, तो कहीं जमीन फटी तो कहीं आ, 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 उसके ऊपर फसल उगी, तो कहीं किसान आया तो कहीं उसको काटा गया, और कहीं पे बाजार पे पहुंची, और फिर कहीं कोई लेकर आया, फिर किसी ने पकाया, फिर हमारे आगे आ गई, और फिर हम नखरा करके कहते ये आज फिर क्यों बना लिया। रोज एक ही चीज बनाते हैं, फिर कहीं मुंह चढ़ाते हैं कि ये तो मजे का ही नहीं बना, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। जो मोमिन होता है ना, वो शुक्रगुजार होता है, वो असबाब के पीछे गैबी हाथ को देखता है, और लोग असबाब में ही खो जाते हैं। हाँ भाई, अब्बा ने कमाया तो अम्मा ने पकाया तो हमारे आगे आ गया, और ऐसा होना ही चाहिए, और हम डिजर्व करते हैं। नहीं, बाप जितना मर्जी कमाता रहता, अगर अल्लाह ताला इसको ना उगाता, अगर अल्लाह ताला बारिश ना बरसाता, तो कैसे ये सामान तुम्हारे आगे आता। अगर जमीन ही ना फटती, बीज डाले रखो, बारिश भी बरसती रहती, तो कैसे तुम इन चीजों से फायदा उठाते। वफाकिहतुम व अब्बा, और फल और चारा, मता लकुम वली अनामिकुम, तुम्हारे खाने का भी इंतजाम किया, तुम्हारे चौपायों के खाने का भी इंतजाम किया, मवेशियों के खाने का भी इंतजाम किया, जिनसे तुम दूध लेते हो, जिनका गोश्त खाते हो, उनके लिए भी इंतजाम करती, ताकि वो खाएंगे तो फिर भी वो तुम्हें ही सर्व करेंगे। तो अल्लाह को पहचानते नहीं हो कि जिसकी वजह से मेरा ये सारा वजूद चल रहा है, मेरी जिंदगी चल रही है, मेरी सांस चल रही है, मैं ये काम काज कर पा रही हूं। खाना एक नेसेसिटी है, देखिए आज खाने के बगैर कितने लोग तड़प रहे हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको देख के भी हमें याद नहीं आता कि खाना कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हमने भूख की कभी तकलीफ को चखा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर रोजा रख लिया साल में एक दफा, तो भी इतने हलकान हुए फिरते हैं कि गिरते पड़ते हैं, हाय रोजा रख लिया, वो भी ऐसी सहरी के साथ रखा होता है कि बस पेट में एक इंच भी गुंजाइश ना रहे, इतना ठूस लेते हैं। उसके बाद भी क्या हाल होता है, हर टाइम ही नहीं गुजरा, हर टाइम नहीं, बार बार घड़ी देखते कब होगा इफ्तारी कब। तो सोचो कि अगर अल्लाह ताला ये रिस्क ना मुहैया करे, तुम कहां से लाओगे। सब चीजें हों लेकिन खाना ना हो, तो इंसान किस हाल में पहुंच जाएगा, ये सब अकड़ खत्म हो जाती। तो तुम मोहताज हो, अपनी तखलीक में भी मोहताज, तुम खुद नहीं पैदा हो सकते, खुद नहीं बन सकते, खुद नहीं दुनिया में आ सकते, और खुद अपनी कब्र का इंतजाम नहीं कर सकते, ना दोबारा खड़े होने का तुम टाइम डिटरमिन कर सकते, ना अपने रिस्क रोजी को ला सकते। तो फिर तुम क्या हो, मोहताज। और जिस जात के तुम मोहताज हो, फिर उसके आगे झुक जाओ। अल्लाह अकबर। फैदा जाअत सोखा, अब बताया गया कि अगर तुम्हें अपनी तखलीक से भी, अपने अंदर गौर करके भी अल्लाह ताला की पहचान नहीं आई, तुम अपने खाने पीने को भी देख के रोज खाते हो, देखिए ना बिला नागा हम खाते हैं, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, आप रोज खाते हैं, लेकिन कितनी दफा उस खाने को खाते वक्त अल्लाह ताला को याद करते हैं, कितनी दफा ये ख्याल ही आता है यार अल्लाह ये खाना मेरे सामने कहाँ कहाँ से हो के आया, और अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दे दिया, मैं डिजर्व नहीं करती थी। कितनी दफा ये सोच आते, कितनी दफा बिस्मिल्लाह से अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से खत्म करते, ये अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे ये खाना खिला दिया, मेरे बस में नहीं था इसको लाना। अगर ये सारी चीजें भी तुम्हें, रोज का खाना और मल्टीपल टाइम्स खाना भी तुम्हें अल्लाह ताला की याद नहीं कराता, तो फिर सुन लो, एक दिन तो याद आएगी, एक दिन तो तुम्हें नसीहत मिल ही जाएगी, वो दिन कौन सा होगा। फैजा जाअत सोखा, जब आ जाएगी। देखिए यहाँ पे भी जा आ है, बड़ी चीज है, कौन सी चीज, जो कानों को फोड़ दे ऐसी आवाज, इतनी तेज आवाज या इतनी खौफनाक दहशतनाक आवाज, वो पता ना कि इंसान एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की आवाज तक सुन सकता है, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इंसान के कानों के पर्दे फट जाते हैं और वो मर जाता है, पता है ना आपको, वो मर जाता है, सरवाइव नहीं कर सकता, सिर्फ एक आवाज की मार है इंसान, उसके लिए कोई लश्कर भेजने की जरूरत नहीं। देखें कई कौमों को अल्लाह ताला ने यही अजाब दे दिया, एक चिंगाड़ की आवाज थी और वो वहीं खत्म हो गए, जैसे समूद, सिर्फ एक चिंगाड़, कोई और चीज नहीं थी। तो कितनी खौफनाक वो आवाज होगी, क्या आवाज होगी कि वहीं के वहीं गिर गए, उठ के भागने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो जब वो कान फोड़ देने वाली होगी, वो यहाँ पे कौन सी चीज मुराद है, सूर का नफखा सेकेंड टाइम जो फूंका जाएगा उसकी बात है, जिसके पर मुर्दे उठ के खड़े हो जाएं, कैसी आवाज होगी सोचें, जो मर चुके हैं कब्रों के अंदर हैं वो खड़े हो जाएं, वो क्या आवाज होगी। पहली एक आवाज तो वो होगी ना कि सभी मर जाएंगे, एक आवाज होगी कि सभी खड़े हो जाएंगे एक ही आवाज पे। कोई ये नहीं कहेगा डोंट डिस्टर्ब मी, कोई ये नहीं करेगा कि अलार्म बंद करके सो जाए फिर से, सब खड़े होंगे। वो दिन फिर कैसा होगा, योम या फिर वुल मरउमिन अखी, उस दिन दौड़ेगा इंसान, फरार होगा इंसान अपने भाई से, जैसे मैंने आपको बताया फरार होना किस चीज, फरार होने का लफ्ज किसके लिए आता है, कि जब किसी ऐसी चीज से इंसान भागता है जो कि उसको डराने वाली, जिससे वो डरता है, उससे जब भागा जाता है तो उसको फरार कहते हैं। तो भाई से क्यों इंसान भागेगा, जबकि भाई तो उसका बड़ा प्यारा था दुनिया में, भाई तो वो है कि जो जिसकी तरफ वो दौड़ता था, आज उससे डर के दौड़ रहा है। सोच लें कि इंसान के जो प्यारे रिश्ते हैं उनका हाल क्या हो जाएगा, कि इंसान उन्हीं प्यारे रिश्तों से भाग रहा होगा, और वजह क्या होगी कि इंसान को ये डर होगा ये अपने हकूक मुझसे ना मांग ले, यानी कहीं ना कहीं कमी की होती है ना इंसान ने हकूक में, तो कहीं ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, कहीं इंसान ने दूसरे का हक अगर मारा हुआ है तो फिर इंसान उस दिन डरेगा कि ये मेरे से हक ना मांग ले, भाई से, भाई कह दे कि तुमने मुझे विरासत में हिस्सा नहीं दिया, तुमने मेरे पैसे खा लिए, तुमने ऐसे कर लिया, तो ये कहीं मुझसे मांग ना ले, इस वजह से भाग रहा होगा, तुमने मेरा ये हक नहीं दिया, कराबतदारी का सिला रहमी का हक नहीं अदा किया तुमने, तो वो उससे भागेगा। यानी इसका मतलब है उसको देख रहा होगा, उसको पहचानता भी होगा, कहीं और कुछ और मखलूक नहीं बन जाएंगे, वही शक्लें होंगी, वही सब कुछ होगा, पता होगा ये मेरा भाई है, वो देखो खड़ा हुआ, और सिर्फ भाई से ही नहीं उससे आगे, ये वो रिश्ता है जिससे सबसे पहले इंसान दूर होता है, क्योंकि इंसान बड़ा होता है तो या तो वो कहीं जॉब के लिए चला जाता है या शादी हो गई तो बहन भाइयों से सबसे पहले दूरी होती है, लेकिन माँ बाप फिर भी साथ रहते हैं, फिर उनसे भी वो भागेगा उस दिन, इनके साथ तो ज्यादा टाइम रहा लेकिन इनसे भी भाग रहा है, वह उम्मी ही वह अभी, माँ चूंकि माँ का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा है, तो माँ का जिक्र पहले आया, और ये वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा मुखलिस है और कभी मुंह मोड़ता नहीं है, माँ से भी भागेगा और बाप से भी। क्यों, कि माँ बाप कहेंगे तुम मुझे अब अपनी नेकियां दोगे, क्योंकि तुमने फलां वक्त में हमारा कहना नहीं सुना था, तुमने हमें छोड़ दिया था, तुमने हमारी खिदमत नहीं की, तुमने हमारी नाफरमानी की, जितने माँ बाप के हकूक, अब इंसान के लिए किसी के भी हकूक का मुकम्मल तौर पे अदा करना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो अब उसको डर लग रहा है ना कि अब जो कमियां हुई हैं मेरी उनके ऊपर मेरी, तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये माफ नहीं करेंगे, अब इसलिए वो भाग रहा होगा। अब सोचे कि कितने हमने माँ बाप को सताया होता और उनसे माफी भी नहीं मांगी होती। उनके लिए अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाता है, उफ तक ना करो उनके आगे। उलमा कहते हैं उफ से भी कोई कम कलिमा होता तो अल्लाह ताला वो मेंशन फरमा देता, लेकिन उफ से कम कोई चीज है ही नहीं। सबसे लोएस्ट लोएस्ट कलमा नागवारी का उफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उफ भी नहीं बोला था, सिर्फ तेवरी चढ़ाई थी। माँ बाप को कहा गया कि कोई कलमा जो लोएस्ट है ना नागवारी का, वो भी ना बोलना। और हमने तो क्या क्या बोल दिया कि होता है, चुप करके बैठे हैं आप, आपको कुछ नहीं पता, आप ना ज्यादा बातें करें, उनको ही क्रिटिसाइज करना, उनके ऊपर ही एतराजात करना, गीले शिकवे उनसे करना, आपने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, आपने हमारे साथ ऐसे कर दिया। तो उस दिन वो जो दुखी माँ बाप हैं, या जिनका हक नहीं दिया हुआ, या माँ बाप वैसे ही कहेंगे, बाप कहेगा बेटे से कि बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया, तुम्हें तालीम दी, तुम्हारी तरबियत की, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, आज मुझे एक नेकी दे दो। बेटा कहेगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन आज तो मैं खुद मोहताज हूं इसका, मैं तो नहीं दे सकता। जो हाजत आपको है वही तो मुझे भी है, मैं नहीं दे सकता। और वो वैसे ही नेकी दे रहा होगा, और अगर किसने कोई कमी की हो तो माँ बाप छोड़ेंगे क्या? साहिबत ही। और फिर माँ बाप के साथ भी इंसान एक हद तक ही एक टाइम तक रहता है, उसके बाद तो अपने स्पाउस के साथ, जब तक मरता नहीं अपने स्पाउस के साथ रहता है, बीवी या तो शोहर के साथ, शोहर है तो बीवी के साथ। वो उससे भी भागेगा जिनके साथ दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, जिनके साथ एक बिस्तर शेयर किया। वह बनी और अपने बेटे से, औलाद में भी इंसान को बेटों से उम्मीदें ज्यादा होती हैं। बेटों को वो सोचता है कि ये मेरे तो जरूरी काम आएंगे, ये मेरा बाजू बनेगा, मेरा बेटा है तो मुझे ढारस है, इंसान को एक ढारस सी फील होती। लेकिन वो जो उसका ढारस का सामान था ना, वो खत्म हो गया, अब तो उससे भाग रहा है वो। मेरा बेटा मुझे ना देख ले, मेरा बेटा मुझसे कुछ ना मांग ले, अब्बा जाना आपने तो मेरी तरबियत ही सही नहीं की थी, आपने ना मुझे नमाज सिखाई, ना कभी मुझे दीन के ऊपर चलने को कहा, आपने मुझे दुनिया की तालीम दे दी। देखिए आप, दीन के मेरे मामले में आपने मेरी फिक्र नहीं की, और आज मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे अपनी नेकियां दें। तो अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी है। तो उस वक्त इंसान फिर इन रिश्तों से भागेगा। अब देखिए ये कितने प्यारे रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं जो क्लोज रिश्ते होते हैं, जो इमीडिएट रिश्ते होते हैं, जो हर मुश्किल में इंसान के साथ खड़े होने वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन सभी बदल जाएंगे, सभी मुंह फेर लेंगे। वो रिश्तों की शक्लें जो आज हैं वो कल नहीं होंगी। कतादा फरमाते हैं कि कयामत के दिन हर बंदे को ये बात बहुत शाख गुजरेगी, यानी उसके ऊपर बहुत भारी होगी कि उसकी जान पहचान वाला करीबी रिश्तेदार उसके ऊपर नजर पड़ जाए, इस डर से कि कहीं वो अपना कोई मुतालबा पेश ना करते, क्या पता मैंने पता नहीं किसी के पैसे देने थे, मुझे तो याद भी नहीं, हो सकता आज ये वो ही ना मांगने आ जाए। तो ये इंसान इतना परेशान होगा इस बात की वजह से कि वो भागता फिरेगा इनसे कि मैं इनका सामना ना कहीं मुझे करना पड़े। अस्तग़फिरुल्लाह। एक उलमा कहते हैं माँ बेटी का झगड़ा होगा, माँ बेटी का भी झगड़ा होगा कि बेटी माँ के ऊपर इल्जाम देगी कि तूने नहीं मेरी तरबियत की, माँ बेटी से कहेगी तू मेरे हकूक नहीं अदा करती थी। तो वो भागेंगे एक दूसरे से, और इनको यही डर होगा कि कोई जान पहचान वाला मिल गया तो कुछ मांगना ले, परवाह नहीं होगी किसी और की। क्यों? लिकुल इमरी मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग्नी, हर शख्स के वास्ते उनमें से एक हालत होगी जो उसको बेपरवाह कर देगी, एक ऐसी हालत में, यानी हर एक इंसान अपनी हालत में इतना मशगूल होगा कि उसको किसी की परवाह नहीं होगी। तो अब समझ आई कि वो क्यों भाग रहा होगा, क्यों फरार हो रहा होगा, वो डर रहा होगा कि तो इनसे कि मेरे से कुछ मांग ना ले। दूसरा, उसको अपनी इतनी पड़ी होगी कि किसी की क्या उसने देखना है किसी की तरफ। जब जैसे इंसान का ना, जब अपनी कोई फिक्र पड़ जाए ना, तो वो कहता है कि मुझे क्या पता आपका, मुझे तो अपनी पड़ गई थी उस वक्त। उस वक्त उसको अपनी पड़ी होगी। किसी को किसी के ऊपर तरस ना आएगा, किसी को किसी की सोच ना खाएगी। आज हमें अपनी औलादों के फ्यूचर की कितनी फिक्र होती है, दुआएं करते हैं तो उनके लिए करते हैं, लेकिन वो कैसा नफसा नफसी का आलम होगा कि औलाद जैसी प्यारी चीज को भी इंसान भूल जाए, जिनकी सारी जिंदगी फिक्र ही की। अल्लाह हू अकबर, किसी और की इंसान उतनी परवाह नहीं करता। माँ बाप को भी नाराज कर लेते हैं, औलाद को कहता है कि मेरी औलाद, बस औलाद के पीछे अपने आप को गुला देता है, वो खत्म कर देता है, उसने भी छोड़ दिया। इंसान कई गुना इस दुनिया में अपने साथी, अपने यानी जौज के पीछे करते हैं। बीवी है तो शौहर के पीछे, शौहर है तो बीवी की डिमांड्स पूरी करने के लिए। लेकिन देख लो, वो उस दिन उन्हीं रिश्तों ने छोड़ दिया, वही रिश्ते इंसान के लिए वो बन गए कि वो कहता है कि मुझे नजर भी ना आए। अल्लाह हू अकबर। इसी गए तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये लोगों का उस दिन क्या हाल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग नंगे पैर होंगे, नंगे बदन होंगे। तो वो पूछने लगी क्या औरतों की भी ऐसी हालत होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। ये सुन के उम्मुल मोमिनीन अफसोस करने लगी कि हाय, ये औरतें ऐसी हालत में होंगी तो क्या होगा, मतलब है कि सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगी, नंगे होंगे तो कभी सोच नहीं सकता इंसान, लोग देखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, इस आयत को सुन लो, फिर तुम्हें इसका कोई रंजो गम ना रहेगा कि कपड़ा पहने हुए हूं या नहीं। वो कौन सी आयत है? लिकुल्लि इमरिइ मिन्हुम यौमा इदिन शअनु युग्नी। वो दिन ऐसा होगा हर बंदे को अपनी अपनी पड़ जानी, अपनी अपनी। मैं तो ये सोचती हूँ आज दुनिया में भी वैसे कुछ ऐसा हाल हो चुका है। अभी तो कयामत नहीं आई, चलो कहीं कहीं हम देखते भी हैं, अच्छे लोग हैं जो सबके हकूक निभाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसका कुछ झलक आप दुनिया में देख रहे हैं आज ना। बहन भाई एक दूसरे को पूछ रहे हैं, माँ बाप तो फौत हो चुके, औलादे या माँ बाप बूढ़ों को छोड़ के कहीं और चली गई, अब उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, आवाज देते हैं तो कोई जवाब देने वाला नहीं, अकेले पड़े में फिर मियाँ बीवी में से भी एक चला जाता है तो बिल्कुल ही अकेले रह जाता, बड़े बड़े घर हैं और अकेले बैठे हैं। दुनिया में भी सबको अपनी अपनी नहीं पड़ गई, देखो क्यों वो कहाँ चले गए, क्योंकि लिकुल इमरिइ मिन्हुम यौमा इज़िन शअनु युग्नी। उस दिन तो होगा, आज भी हर एक को ऐसा कोई अपने हालात है उनके, कि जो इसने बेपरवाह कर दी, किसी की जॉब है, किसी की शादी कहीं दूर हो गई, किसी के अपने बच्चे हैं, मसले मसाइल हैं, वो नहीं अब कर सकते, तो जिसने उनको बेपरवाह कर दिया, उनके अपने ही काम नहीं निबटते, वो इनके पास क्या आए, इनको क्या देखें। तो इसकी एक झलक हम दुनिया में भी देख लेते हैं, फिर भी हमारा ये हाल है। वहां पे तो बिल्कुल ही बेगाने हो जाएंगे ना, वहां पे भागेंगे। यहां पे भी दुनिया में उनको वो फोन भी करें तो फोन नहीं उठाते, फिर भी हमें ये इबरत नहीं आती कि हम अपनी आखरत को इन्हीं रिश्तों के पीछे खराब करते हैं। सबसे ज्यादा शौहर नहीं मानता, कोई आदमी कहता है कि बीवी की डिमांड ये, कोई कहता है कि बच्चे ये कहते हैं, बच्चों को कैसे नाराज करें, उनकी खुशी है। तो इनमें से तो किसी ने काम, तो दूर की बात है काम आना, तो दूर की बात है, वो देख के ही भाग जाएंगे। तो सोचे इंसान पे उस दिन क्या गुजरेगी कि प्यारे रिश्ते हैं लेकिन मेरे देख के ही भाग रहे हैं। वो दिन ही ऐसा है, किसी को किसी का ख्याल नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। अगर बाप बेटा बेगाने हो गए तो और कौन रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलल अज़्म पैगंबरों से लोग शिफा तलब करेंगे, तो उनमें से भी हर कोई कहेगा नफसी 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 नफसी, हमें तो अपनी पड़ी। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमाएंगे कि आज मैं अल्लाह के सिवा अपनी जान के और यानी अल्लाह ताला से अपनी जान के सिवा और कोई चीज का सवाल नहीं करता, मैं तो अपनी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम का भी कोई सवाल नहीं करता जिनके पेट से मैं पैदा हूं। तो कहाँ ये रिश्ते, कहाँ दोस्तियां, कुछ नहीं होगा, आपा धापी पड़ी होगी, किसी को किसी का होश नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, घबराहट का ये आलम होगा कि किसी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये है आखरत जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और ये हैं जिनके पीछे हम आज इतने घुले पड़े हैं कि हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। कहाँ चला जाता टाइम? बीवी बच्चों के इतनी ज्यादा ख्वाहिशात हैं कि उनको पूरी करने के लिए एक आदमी लगा हुआ है, और वो ऐसी एक जॉब फिर दूसरी जॉब फिर बिजनेस फिर फलां, बच्चों के लिए कुछ बना के छोड़ जाऊं। औरत है तो उस बच्चों के कामों से बाहर, बच्चों की डिमांड ये है ना, ये खाना बना रही, बच्चों की डिमांड है, वो खाना बना रही बच्चों की, बच्चों ने ये कह दिया, बच्चे ये मांगते हैं, अब वो सारा दिन बस बच्चों के पीछे ही भाग रही है और अपनी आखरत भूली भी, और यही आदमी का हाल है। तो देख लें ये और यही हमारी बिरादरी है, यही हमारे खानदान है। जब हम कहते हैं ना खानदान नहीं मानता, क्या करें, खानदान हमारी तो फैमिली नहीं मानती, हमारी तो फैमिली में ऐसे नहीं होता, वो यही है ना रिश्ते जिनसे फैमिलीज बनती हैं, खानदान बनते हैं। देख लें कि ये रिश्ते क्या करेंगे। कोई एक भी नहीं आगे बढ़ के कहेगा कि आओ मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर देती हूँ, आओ मैं तुम्हारे गुनाह ले लेती हूँ, आए तुमने मेरे कहने पे किया था, चलो चलो तुम फारिग हो, आज मैं तुम्हारी जगह सजा भुगतूंगी। कोई नहीं कहेगा। और इनके गमों में ही हम घुलते रहते हैं, अपनी आखरत को भूल गए हैं, तो ये उस दिन हमें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी आखरत के मामले में किसी की नहीं माननी, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो प्यारा कितना ही महबूब है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, वालदेन है, किसी की नहीं माननी, क्योंकि आखरत के दिन इनमें से किसी ने भी मुंह मोड़ के देखना भी नहीं है, पलट के देखना भी नहीं है किसी ने। तो सोचें फिर हम क्यों इनके पीछे अपनी आखरत को दाव लगा। जिसने अपनी आखरत को दाव पे लगा दिया, उसने बड़े ही घाटे का सौदा किया, फिर उसके गम का आलम क्या होगा जब ये सब छोड़ेंगे तो, हाय इनके पीछे मैंने ये किया, हाय इसके पीछे मैंने किया, हराम काम भी गुनाह के काम भी इनके पीछे ही करते हैं, ताकि ये खुश हो जाए। बहुत सारी औरतें कहती हैं हम हिजाब इसलिए नहीं लेते, हस्बैंड नहीं मानते, तो ये हस्बैंड जवाब देंगे उस दिन? अल्लाह हू अकबर। और ये छोटी सी जिंदगी है जिसमें अल्लाह ताला को राजी करना है। इन हकूक, इन रिश्तों के हकूक जरूर दें, लेकिन उसमें रब को ना भूल जाएं, उसी ने इनके हकूक रखे हैं ना, इनके हकूक देते देते कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, और ये ना कहें हाँ अल्लाह ताला ने कहा है ना इनकी मानो तो इसलिए इनकी मान रहे, ये नहीं कहा कि अल्लाह की नाफरमानी करके इनकी मानो। और दुनिया का कयाम बहुत थोड़ा है, बहुत जल्दी ये वक्त आ जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था, सुन लो, दुनिया पीठ फेर चुकी है, वापसी के लिए चल चुकी है, सुन लो आखरत चल चुकी है, आखरत करीब है, तुम्हारी तरफ आ रही है, और दुनिया जा रही है, दुनिया ने टर्न ले लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था अपनी दोनों उंगलियां मिला के कि मैं और कयामत ऐसे हैं, इतनी करीब। नहीं, अब दुनिया का जो टाइम है ना वो बहुत थोड़ा रह गया, अगर एक पूरे दिन में देखें कि दुनिया का पूरा दिन है जो दुनिया का टाइम है, तो उसमें हम असर के बाद के वक्त में हैं, जल्दी मगरिब हो जाएगी, डूब जाएगा सूरज, दिन खत्म हो जाए, फिर भी हमें एहसास नहीं, और फिर भी हम पता नहीं किधर लगे हुए, फिर वो दिन होगा जिस दिन चेहरों के कुछ हाल होंगे। असल में चेहरा जो है वो इंसान के अंदर का हाल बताता है, तो बताया गया कुछ चेहरे, इसी से आप देख लीजिएगा कि इनके अंदर क्या हो रहा है, वजूह यौम इज़ मुस्फिरा, कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे, चमकते भी होंगे, दुआहे का तुन हाथ सरे होंगे, सिर्फ मुस्कुराना नहीं, दांतों के साथ जो हंसना होता है ना उसको कहते हैं दुआहे का। मुस्तबशिरा, खुशियां मनाते होंगे, यानी इतने खुश होंगे वो कि उनकी खुशी का आलम ये होगा कि चेहरे से पता चल जाएगा कि इनकी खुशी आज देखने वाली है, उस खुशी की वजह से उनके चेहरे रोशन होंगे, उसकी खुशी की वजह से वो हंस रहे होंगे। ये कौन लोग होंगे? बहुत सारी चीजों का बताया गया कि मसलन है कि चमकने का तो बताया गया, वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे उस दिन। इसी तरह ये बताया गया कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं जो ना अंबिया हैं ना शुहदा हैं, मगर इनके मर्तबे अल्लाह ताला के नजदीक ऐसे होंगे कि अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। तो सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले, उनके दरमियान रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बाहमी मोहब्बत करते हैं और दिल में उनके लिए मैल कुचैल नहीं रखते। अल्लाह ताला कयामत के दिन नूर के मिंबर बिछाएगा और ये लोग उन पर तशरीफ फरमा होंगे, इन पे ना कोई घबराहट होगी, ये कोई कुछ घबराएंगे नहीं। और ये पता चलता है कि ये उस दिन अमन आमान में होंगे, ये उस दिन खुश होंगे, इनके ऊपर रश्क हो रहा होगा। अल्लाहु अकबर। और ऐसे लोग भी होंगे जो कि रातों को उठते हैं अल्लाह ताला के याद में, उसके आगे खड़े होते हैं, तो उनके भी चेहरे रोशन होंगे उस दिन। उमदा अखलाक वाले भी ऐसे लोग हैं जो उस दिन अमन में होंगे। जब अमन में होगा इंसान तो जाहिर ही बात है खुश होगा उस दिन, जिसको उस दिन अमन मिल जाए वो कामयाब है। अल्लाह अकबर। तो हम देखते हैं कि चेहरों की हालत इंसान का पता दे रही है कि उसकी खुशी देखने वाली होगी। और वजूह हुई यौम इदिन अलैहा खबरा, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे कि जिनके ऊपर गुबार होगा। अब ये वो भी हैं जिनको बाएं हाथ में अमालनामा मिला, और खुश वो भी हैं जिनको दाएं हाथ में अमालनामा मिला। हम सूरह हाक्का में पढ़ रहे हैं ना कि वो नारा लगाएगा खुशी से, हा मुकरऊ किताबिया, देखो मेरी किताब, देखो मेरी किताब। वो इतना खुश होगा, उसकी खुशी देखने वाली होगी। आज देखो मेरा अमालनामा पढ़ो, मुझे पता था कि एक दिन मुलाकात होनी है, मुझे पता था कि एक दिन कयामत आनी है, मैंने उसकी तैयारी की थी। उसके लिए ऐलान होगा, चलो अब जन्नत की तरफ, चलो जाओ उस नेमतों में रहो, खाओ पियो मजा करो। तो अल्लाह अकबर। वो लोग भी हैं जिनके चेहरों पे गुबार उड़ रही है, खस्ता हाल हैं, परेशान हाल हैं। ये वो हैं जिनके बाएं हाथ में अमालनामा दिया गया, ये वो हैं जो कुफर करने वाले थे, ये वो हैं जो दुनिया में वो नहीं करके आए जिसके लिए उनको भेजा गया था। तो चेहरों से पता चल गया, युअरफुल मुजरिमून अभी सीमा हम, तुम मुजरिमों को उनके चेहरों से पहचान लोगे, कि चेहरों पे लिखा होगा कि क्या किसके साथ क्या आज होने वाला है, आज किसका क्या अंजाम होना है। जाहिर है आप देखे ना दुनिया के अंदर भी किसी का रिजल्ट निकलना हो, कुछ लोग इतने परेशान होते हैं, उनको पता है वो कुछ नहीं करके आए, और कुछ को ये होता है कि पोजीशन कौन सी आएगी मुझे नहीं पता, फर्स्ट है या सेकंड है, वो थोड़े परेशान होते हैं उस वजह से उनको एंजाइटी होती, लेकिन उनको ऐसे नहीं होता कि हम फेल हो जाएंगे, उनको पता है उन्होंने अच्छा किया था। अल्लाह अकबर। तो उनपे गुबार होगा, तरहा कुहा कतारा, ढांकेगी उनको स्याही, धुआं काला धुआं ढांक रहा होगा उनके चेहरे का रंग जो होगा ना वो ऐसा होगा जैसे काला धुएं ने कालक ने ढांप लिया है, ये असल में उनके अहमाल की कालक है। उनको पता होगा कि हम हमारे साथ जो सलूक को होना है, और सूरह आले इमरान में भी हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे भी आता है कि कुछ चेहरे होंगे जो रोशन होंगे, सफेद होंगे रोशन होंगे, और कुछ चेहरे होंगे जिनके ऊपर गुबार उड़ रही होगी, कुछ चेहरों के ऊपर ऐसा होगा कि पता चल रहा होगा कि ये नाफरमानों के चेहरे हैं। अब वहां पे है ना, यौम तबियत दू वजू व तस्वंद दू वजू, उस दिन तो काले और सफेद की बात है, काले और सफेद की बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो काले होंगे तो तुमने कुफर किया ईमान लाने के बाद, तुम्हारे सामने सब कुछ आ गया था, तो फजूक उड़ाता अभी मा कुंतुम तकफुरून। और जो अमल लदीन अबियदत वजूहू फफी रहमतिल्लाहि हुम फीहा खालिदून, वो अल्लाह की रहमत में होंगे जिसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह, ये लोग कौन है जिनके चेहरे से आओगे? उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो हैं जो काफिर हैं और जो फाजिर हैं, बदकार हैं, फिस्को फुजूर करने वाले हैं। काफरों के चेहरे भी ऐसे होंगे, ना शुक्रों के भी ऐसे होंगे, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को सुना और उसके बाद इनकार कर दिया, और उनके भी जो गुनाहों के अंदर खुल्लम खुल्ला पड़े रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो अल्लाह ताला के यहाँ पेश होने वाले हैं, वो शरीयत के दायरे से निकल चुके थे। आज हम कहते हैं ना अमल करना बहुत मुश्किल, तो अगर आज ना अमल किया तो वहां जो मुश्किल है ना वो बहुत बड़ी है। अमल करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं, तो जिन्होंने गुनाह कर कर के रब को नाराज कर दिया और तौबा नहीं की, उनका ये हाल होगा। यहां तक ये सूरत थी, अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम मौजूद है और हमने एक ही रुकू पढ़ा है, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरह तकवीर और इन्फितार, ये दो सूरतें हैं जिनका एक ही मौजू है और वो कयामत के हौलनाक मनाजिर हैं, इसका सिर्फ हम तर्जुमा आज लिख लेंगे ताकि हमें अगली दफ़ा हम सिर्फ इसकी तफसीर देख सके। सूरह तकवीर देखते हैं, मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जब अश्शम्स, सूरज, कुवीरत, लपेट दिया जाएगा, कवर करना जैसे होता है ना, तो लपेट दिया जाएगा। वह ईदा, और जब अन्नुजूम, सितारे, नजम से नुजूम, उनका दरत, जब ये गदले हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, या जैसे कहें कि मध्यम हो जाएंगे। वह ईदा, और जब अलजिबाल, पहाड़, सुयीरत, चला दिए जाएंगे, स्विफ्टली स्मूथली चलना सुयीरत सैर से ही है। वह इधल इशारो, और आशरा से इशार, जब आशरा से आशरा 10 को कहते हैं, जब 10 महीने की हामिला ऊंटनी, औतीलत, तातील उर्दू में कहते हैं ना तातील, यानी छुट्टी, तो जब छुट्टी हो तो इंसान बेकार हो जाता है, यानी बेकार छोड़ दी जाएगी, तनहा छोड़ दी जाएगी। वह इधल वहोश, और जब वहशी जानवर, हुशीरत, हशर नशर करना होता है तो हुशीरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वह इधल बिहार, और जब समंदर, सुजीरत, सीन जीम और रॉ से भड़का दिया जाना किसी चीज के भड़कने के लिए और खलत मलत होने के लिए, तो भड़का दिए जाएंगे। वह इधर नुफूस, और जब नफ्स यानी जाने, जुवीजत, जोड़ दी जाती, जौज भी अपने जौज के साथ जुड़ा होता है ना, तो जोड़ दी जाएंगी। वह इधल मऊदा, तो और मऊदा जिंदा गाड़ी भी लड़की, सुइलत मजहूल है ये सब, पूछी जाएगी, बी अय्यी, किस ज़म्बिन, गुनाह के, कुतिलत, तू मारी गई, तू नहीं सिर्फ मारी गई। वह इधर सुहफु, और जब सहीफे यानी आमालनामे, नुशीरत, नशर कर दिए जाएंगे। वह इधर, और जब असमाऊ, आसमान, कुशीतौत, खाल उतारने को कहते हैं, उसकी खाल उतारती जाएगी। वह इधल जहीम, और जब जहन्नम, सुइरत, अजाब साइर, आप देखते हैं ना भड़कने वाला अजाब, तो भड़का दी जाएगी। सुइरत मोहनस का सीगा रसारों के साथ, तासा के मोहनस की है। वह इधल जन्नत, और जब जन्नत, उजलिफत, जुल्फ कहते हैं ना, जुल्फ इंसान की होती है, ये बाल की जुल्फ लट, तो ये करीब होती है ना चेहरे से, तो उजलिफत करीब ले आई जाएगी। आलिमत जान लेगा, नफ्स की बात हो रही तो तासा की ना जो है वो मोनस की है, नफ्स मोनस है, जान लेगा हर नफ्स माँ क्या आह दौरत उसने हाजिर किया, यानी बोले क्या है, फला कुसिमु बस नहीं मैं कसम खाता हूं, बिलखुन्नस, खुन्नस जो बुरा ख्याल डाल के पीछे हट जाए, जैसे ना सूरह नास में मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास क्या है जो वसवासा डालता है और पीछे हो जाता है, फिर वसवासा डालता है फिर पीछे हो जाता है, पीछे हटने वाली की, अल जवार सीधे चलने वाले, अल कुन्नस, कुन्नस जहां पे किनास कहते हैं जहां पे जानवर रात को रहते हैं, तो छुप जाने यानी कहीं छुप जाना, छुप जाने वाले, वो लेली और रात की, ईदा जब आस आस रुखसत होना, तो रुखसत हो जाती है, वह सुबह और सुबह की, ईदा जब तनफ्फस सांस लेती है, नफ्स भी सांस लेता है तो नफ्स कहलाता है ना, इन्नहू बेशक वो लकौल अलबत्ता बात है, रसूल एक रसूल की एक पैगंबर की, करीम मुअज्जज जी वाला है, कुव्वत इन कुव्वत का, आइंदा पास दिल अर्श, अर्श वाले के मकीन बुलंद मर्तबा, मुताइन इताद से है, कहा माना गया, तम्मा सुम्मा नहीं है ये, फिर नहीं है, तम्मा है उसी जगह के लिए आता है, उस जगह अमीन अमानतदार है, और मा साहिबुकुम और नहीं साथी तुम्हारा भी मजनून, कोई मजनून, वलकद और अलबत्ता तहकीक, रआहु उसने देखा उसको, बिल उफुके उफुक पर, अलमुबीन वाजे रोशन, वमा हुआ और नहीं वो, आलल गईब गैब पर, भी दोनीन दोद नून नून, बुखल को कहते हैं बखील, भी दोनीन बखील, वमा हुआ और नहीं वो, भी कौली शैतान रजीम, कौल शैतान मरदूद का, फ़ऐना फिर किधर, तदहबून तुम जा रहे हो, इन हुआ नहीं वो, इल्ला मगर जिक्र लिल आलमीन, नसीहत जहान वालों के लिए, लीमन शाह वास्ते उसके जो चाहे, मिनकुम तुम में से, अन यस्तकीम के वो सीधा रास्ता इख्तियार करे, वमा तशाउन और नहीं तुम चाह सकते, इल्ला मगर अन यशा अल्लाह ये के चाहे अल्लाह, रब्बुल आलमीन रब तमाम जहानों का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इदस समा उन फतर जब आसमान, उन फतरत फतरा कहता फाड़ने को, तो फाड़ देना फट जाएगा, चिरना बड़े वाइडली चीर देना किसी चीज को, वह इदल कवाकिबू कौकब की जमा कवाकिब, जब सितारे इन तसारत बिखर जाएंगे, नसर से नून से रा, और आप देखें एक शेर होता है और एक नसर, नसर में बिखरे होते हैं ना अल्फाज, शेर में कंसोलिडेट करके आप उनको एक पैटर्न में लेके आते हैं, वह इधर बिहार और जब समंदर फुज्जीरत, फजर भी फटती है वो फटती है ना फजर में, तो फुज्जीरत फाड़ दिए जाएंगे, वह इधर कुबूर और जब कब्रें, बा असीरत बा आइन था नीचे की चीज ऊपर कर देना तलपट कर देना तो खोल दी जाएंगी, आली मत फिर आगे नफ्स है तो इसलिए तासा किना आई, क्योंकि नफ्स मोनस होता है, जान लेगा हर नफ्स हर शख्स माँ जो कदमत उसने आगे भेजा, वो अखरत और पीछे रखा, या युहल इंसान ए इंसान, माँ गर्रा का किस चीज ने गर्रा का धोखे में डाला का तुझको, बी रब्बी कल करीम तेरे रब से जो करीम है, अल्लदी वो जिसने, खलाका उसने पैदा किया का तुझको, फसव्वा का फिर दुरुस्त किया बराबर किया, फआदलक फिर बराबर किया, अच्छा सव्वा भी में भी बराबर करने का माना होता है और आदल में भी बराबर करने का माना, तो दोनों के एक हमवार करना हो गया और एक आदल, जैसे कहते हैं ना हम अदलो इंसाफ करो तो बराबरी करो, तो सव्वा दुरुस्त किया या नोक पलक संवारी का तुझको, फादलक फिर बराबर किया तुझको, फी अय्यी, जिसमें सूरतिन शक्ल, मा शाह उसने चाहा, रक्याबक रक तरकीबी से राकब कहते हैं, राकब कहते हैं ना पीछे बैठने वाले को सवारी में, तो वो भी सवार के साथ ही जुड़ा ही होता है, चढ़ा ही होता है उसके साथ, तो जोड़ दिया का तुझको, कल्ला हरगिज नहीं, बल बल्कि तू कज़िबून बितीन, तुम झुटलाते हो जजाओ सजा को, मालिक की यौम तीन भी है ना, मालिक बदले के दिन का, तो बदले को झुटलाते हो, वह इन्ना और बेशक अलैकुम तुम पर, लहाफिदीन अलबत्ता हिफाजत करने वाले, किरामन कातिबीन, किराम करम से है बुजुर्ग मोहतरम, कातिबीन लिखने वाले, यालमून वो जानते, मा तफालून जो कुछ भी, तफालून तुम करते हो, इन्नल अबरार बेशक नेक लोग, लफी अलबत्ता में, नईम नेमतों में, व इन्नल फुज्जार और बेशक फुज्जार लोग, लफी अलबत्ता में, जहीम जहन्नम, यसलौना मैंने आपको बताया था ये यसलौना जहन्नम में दाखिल होने के लिए आता है, तो यसलौना वो दाखिल होंगे हाँ उसमें, यौम तीन जजा सजा के दिन, बदले के दिन, वमा हूँ और नहीं वो अनहा उससे, लबी गौइबीन कुछ गायब होने वाले, वमा और क्या चीज, अदरौ का बताए तुझको, मा यौमुद्दीन क्या है यौमुद्दीन, सुमा मा अदरौ का मा यौमुद्दीन फिर, और फिर वो ये यौमा जिस दिन, ला तमलिको नहीं मालिक होगा, नफ्सुन कोई नफ्स, ली नफ्सिन किसी नफ्स के, शई अन कुछ भी, वल अम्र और तमाम मामला, यौमा इदिन उस दिन, लिल्ला लिए अल्लाह ही के होंगे। यहां तक हम इंशाअल्लाह ताला अगली दफा इसको देखेंगे, आज का आपका लेसन सिर्फ आबासा तक ही है, नेक्स्ट लेसन होगा आपका ये, सिर्फ आज हमने तर्जुमा इसका किया, अल्लाह ताला कबूल करे और हमें इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सुनिए इसकी तिलावत।
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.